पैराग्राफ चेंज। राम के प्रति गोस्वामी जी का भक्ति भाव यहाँ अपने चरम पर है। उनकी भक्ति को यदि उसके पूरे उत्कर्ष में अपनी उदात्तमय छवि में कहीं देखा जा सकता है, राम के प्रति उनकी आस्था और विश्वास को उसके तरल से तरल और दृढ़ से दृढ़तर रूप में कहीं पाया जा सकता है, तो इस विनय की पत्रिका में उनकी अपनी प्रपत्ति, दीनता, लघुता, असमर्थता, कातरता की वेधक अभिव्यक्ति के पूरे प्रभाव में अपने लिए वे अपने राम से कुछ भी नहीं चाहते। उनकी भक्ति नितांत अहेतुक और निस्वार्थ है। वे बस यही चाहते हैं कि उनके राम जीवन और समाज को कली काल के इस पंजे से छुड़ाए। कारण वही हम कह सकते हैं। अपने तई तो उनका भक्त यही कह पाता है, राम सो बड़ो कौन मोसो छोटो, राम सो खरो कौन मोसो खोटो। तुलसी का भक्ति को राम भक्ति का अत्यंत प्रामाणिक दस्तावेज है उनकी विनय पत्रिका। पैराग्राफ चेंज। तुलसीदास का फरियाद पत्रिका के जरिए राम के सामने, परंतु विनय पत्रिका के राम तुलसीदास के अपने जाने पहचाने उनकी आस्था के भक्त वत्सल्य दीन बंधु राम नहीं, वे मध्यकालीन सामंती तंत्र के मुगल बादशाहों सरीखे बादशाह राम है। उनका वैसा ही बादशाहों जैसा भव्य दरबार में है, दरबान है देहरी पर, भीतर मुसाहिबों से घिरे सिंहासनासीन राम। तुलसीदास दरबारों से प्रवेश के लिए घिघियाते गिड़गिड़ाते हैं, दांत निपोड़ते हैं, परंतु दरबार में प्रवेश नहीं कर पाते। विनय पत्रिका में देवी देवताओं की स्तुतियां है, उनकी महिमा का आख्यान है कि कोई तो उनकी मदद करे, परंतु उन्हें निराश ही हाथ लगती है। अंततः वे माता सीता की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु से उनकी सिफारिश करें, कहे कि उनका एक भक्त द्वार पर खड़ा उनसे मिलने की प्रतीक्षा में है। कहते हैं कि प्रभु जब पूछे तब माता मेरा नाम, पता, ठिकाना, परिचय बता देना, कबहूँ अम्ब अवसर पाई। पूरा पद गोस्वामी जी की बेचारगी, उनकी विलहता, दीनता का साक्ष्य है। पृष्ठ संख्या 218। बहरहाल गोस्वामी जी की पत्रिका जरूर भीतर पहुंच जाती है, वे स्वयं दरबार में नहीं जा पाते। उन्हें संदेह है कि पत्रिका उनके प्रभु के पास पहुंचेगी या नहीं, वे उसे स्वयं पढ़ेंगे या उनका कोई दरबारी विश्वास पात्र उसे पढ़कर प्रभु को सुनाएगा। संदेह है कि वह पत्रिका की सारी बातें, उनकी पूरी प्रार्थना उन तक पहुंचाएगा कि नहीं। वे विनती चाहते हैं प्रभु से, अपने प्रभु पिता से, विनय पत्रिका दीन की, बापू आप ही बाचो, हे प्रभु इस दीन की पत्रिका आप स्वयं पढ़े। सारा इतिवृत्त इतना मार्मिक और यथार्थ है कि मन पर वेधक प्रभाव छोड़ता है। विनय पत्रिका में यह जो तुलसीदास का दैन्य, उनका अग्निरूपण, अपने दुर्गुणों का कथन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अपने अवगुणों को छिपाने की नहीं, उन्हें उठा उठा कर दिखाने की प्रवृत्ति है, आत्मभर्सना है। इसे तुलसी के भक्ति भाव की पराकाष्ठा माननी चाहिए। यहाँ वे संसार के कर्म कुकर्मों को अपने माथे लेते हुए, सबका किया हुआ अपना किया मानते हुए, समाज के प्रतिनिधि की तरह राम से फरियाद करते हैं। उनका लक्ष्य उनकी अपनी मुक्ति नहीं, समाज की मुक्ति है। जाहिर है कि यहाँ तुलसी स्वप्न दृष्टा नहीं है, वे मोह भंग की व्यथा से व्यथित है। जो कुछ अब तक उनकी मनोभूमि में था, उसका विपर्यय, उसका कंट्रास्ट विनय पत्रिका में है। आदर्श नहीं, जीवन का यथार्थ इस रचना की दृढ़ है। यथार्थ की सबसे खरोचे, उसके बड़े गहरे निशान यहाँ तुलसी की मानस में है। तुलसी यहाँ बहुत अकेले, असहाय और भयाक्रांत भी है। तुलसीदास के परिवर्तित मनोलोक का यह साक्षात्कार क्या हमें तुलसीदास को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने को नहीं कहता? उनकी यह नई जमीन उनकी पुरानी जमीन की तुलना में क्या हाशिए पर डाल देने वाली चीज है, जबकि वह उनकी सही और वास्तविक जमीन है। आइए अब तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान पाहुक से होकर गुजरे, जो तुलसीदास के उस परिवर्तित मनोलोक को और गाढ़ा करके प्रस्तुत करती है, उनके मोह भंग को उनके पूरे उत्कर्ष में सामने रखती है। 42-43 छंदों की बड़ी संक्षिप्त रचना है यह। जितनी संक्षिप्त है उतनी ही मार्मिक और बेधक। जैसा हमने कहा है, यह रोग जर्जर वृद्ध तुलसीदास की रचना है। तरह तरह के रोग, तरह तरह की शारीरिक व्याधियाँ, यातना की पराकाष्ठा भोग रहे हैं तुलसीदास, चीख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो उन्हें यह यातना से मुक्त करे। उनकी गुहार, उनका रुदन, उनका चित्कार इतनी मार्मिक और हृदय भेदक है कि भीतर तक हिला देती है। पृष्ठ संख्या 219। लगता है कि हमारे घर परिवार का ही कोई हमारा आत्मीय वृद्धावस्था के कष्ट और तरह तरह की व्याधियों से आक्रांत हमें गुहार पुकार रहा हो। कहाँ है गठिया बात पीड़ा, बाहु पीड़ा, बाल तोड़, प्लेग की गिल्टी, क्या क्या इस अवस्था में उन्हें कष्ट दे रहे थे। राम भक्ति की केंद्रीयता वाली तुलसी की सर्जना में यह पहली रचना है जिसमें केंद्रीयता राम की नहीं, राम भक्त हनुमान की है। उन हनुमान की जो गोस्वामी जी के जरिए ही एकादश रुद्र के अवसर अवतार के रूप में हिंदी क्षेत्र में पूज्य बने, मंदिरों में जिनकी पूजा अर्चना की परंपरा शुरू हुई, हनुमान को देवत्व प्रदान किया है तुलसीदास ने। हनुमान उनके पूज्य तो बने ही, राम की तरह पूरे हिंदी क्षेत्र के भी पूज्य हुए। यातना की चरम स्थितियों में तुलसीदास ने इस कृति में यातना से मुक्ति के लिए राम से नहीं, हनुमान से गुहार लगाई है, खास तौर से बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए जो उनके प्राण निकाल रही है। इसी नाते वे रचना का नाम रखते हैं हनुमान बाहु। महावीर संकट मोचन हनुमान को इतने विशेषणों के साथ इस रचना में तुलसीदास ने याद किया है जिनकी कोई सीमा नहीं। सारे विशेषण उनके तेज, उनके तेजस्वी रूप, उनके बल और उनकी वीरता के हैं। वे इस कृति में सिंधु रतन, सिंह सोच हरण, रविबाल बरन, विशाल भुजाओं वाले कराल काल के भी काल, निशंक राक्षसों के बल को विदीर्ण करने वाले पवनसुत, समेरु पर्वत जैसे विशाल और स्वर्ण शरीर वाले करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, बरजोर, रणरोर आदि आदि है। ऐसे हनुमान के सामने किसी की क्या मजाल जो ठहर सके। अपने इसी विश्वास के तहत ही अपनी यातना की दुर्दम क्षणों में गोस्वामी जी ने उन्हें स्मरण किया है। शुरुआत के 15-20 छंदों में हनुमान की वीरावली ही है, उनकी वीरता का, उनके तेज का निदर्शन करने वाली। परंतु हनुमान कदाचित गोस्वामी जी की आशा के अनुरूप उनकी संकट का मोचन करने के लिए प्रस्तुत नहीं होते। तुलसीदास की यातना उग्र से उग्रतर होती जाती है। गोस्वामी जी निराश से हो उठते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी यातना के प्रति संकट मोचन हनुमान की यह उदासीनता क्यों। वे सोचते हैं शायद अब वे बूढ़े हो गए हैं, प्रमाद ने उनको घेर लिया है। बूढ़ भय बलि मेरे ही बार की हारी परे बहुते नत पाले। वे हनुमान से उनकी उदासीनता का, उनकी चुप्पी का कारण जानने की कोशिश करते हैं। अपनी यातना का विवरण देते हुए कहते हैं, राम के गुलाम मणि को काम तरु राम दूत, मोसे दीन दूबरे को तकिया निहारिए। पृष्ठ संख्या 220। बड़े दीन होकर कहते हैं तुलसीदास कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई दूसरा आसरा या ठिकाना नहीं। कहते हैं मेरी विशाल भुजा रूपी पोखरी में पीड़ा रूपी मकरी यानी गगरी उछल उछल कर मुझे बेहद कष्ट दे रही है, अतः पीड़ा रूपी इस गगरी का मुंह फाड़कर इसे मार डालिए। इसके उपरांत के छंदों में बाहु पीड़ा का आख्यान है। निराशा के क्रम में वे इस बिंदु पर भी विचार और सोचने लगते हैं कि उन्हें जो यातना मिल रही है वह उनके किए का ही भोग मात्र है, उनके अपने पापों का भी परिणाम है।